गाथा में आप सुन रहे हैं मिर्जा हैदर अब्बास की लिखी कहानी धोखा। लीजिए सुनिए इस कहानी का पहला भाग। उन पांचों दोस्तों में कॉमन बात यह थी कि सबके सब बहुत ऐश भरी जिंदगी गुजारना चाहते थे। मुश्किल ये थी कि उनके पास स्थायी और बेहतर आमदनी का कोई जरिया न था। इन सभी की मुलाकात अलग अलग हुई थी, सभी एक ही जैसी हालत में थे, इसलिए इन पांचों में जल्द ही गहरी दोस्ती हो गई। इनमें से किसी ने भी अपने हालात खुलकर एक दूसरे से बयां तो नहीं किए थे, लेकिन सभी एक दूसरे के मामलात से वाकिफ थे। वो सभी अक्सर आहें भरते हुए कहते कि काश हम इंग्लैंड में पैदा हुए होते। धीरे धीरे ये जुमला उनका तकिया कलाम बन गया था। तकिया कलाम मतलब कि वो बात बात पर इस जुमले को दोहराते रहते, काश हम इंग्लैंड में पैदा हुए होते। उन सबका सोचना था कि अमेरिका इंग्लैंड न सही, अगर वो दुबई या अबू धाबी चले जाएं, तो उन सभी की किस्मत बदल जाएगी। यहां अगर उन्हें कोई नौकरी मिलने के आसार बनते तो वो उनकी शान के खिलाफ होती। इतनी कम सैलरी पर काम करना उनके लिए मुमकिन नहीं था। नौकरी मिलने पर सुबह से शाम तक काम करने के बाद भी अगर वो ऐशो आराम की जिंदगी नहीं गुजार सकते थे तो ऐसी नौकरी का फायदा भी क्या। इस बेरोजगारी के आलम में भी वो अपने खाने पीने का बंदोबस्त कर ही लेते थे। वो अक्सर अपनी शामें एक कैफे में गुजारा करते, जहां 10 रुपए की एक एक चाय पीने के बाद वो सभी घंटों अपनी कुर्सियों पर विराजमान रहते। यहां भी उनकी चर्चा का विषय आमतौर पर यही रहता कि अगर किसी तरह से किस्मत उन पर मेहरबान हो जाए तो कितना अच्छा हो। वो किस्मत को मेहरबान होने का मौका भी देते रहते थे, इसके बावजूद वो मेहरबान नहीं हो रही थी। मसलन कभी किसी ने लॉटरी का टिकट खरीद लिया, कोई अखबारों में आने वाली पहेली की प्रतियोगिताओं में शामिल हो जाता जहां बड़े इनाम का वादा रहता था, कभी कभी कोई शेयर भी खरीद लेता। जब वहां भी किस्मत साथ न देती तो वो उसे बेच देते, कभी कभी सट्टेबाजी में भी हाथ आजमा लेते। उनकी किस्मत रूठी हुई महबूबा की तरह थी, जो उन पर मेहरबान होने का नाम ही न लेती थी। उन पांचों की महफिल अक्सर उदासी पर शुरू होती और उदासी पर ही खत्म हो जाती। उनके पास इस दुनिया में धमाकेदार काम करने का हौसला तो था, लेकिन ऐसा कर गुजरने का कोई साधन नहीं था। लोग उन्हें अजीब अजीब मशवरे देते। कोई कहता कहीं क्लर्क हो जाओ और पैसे जमा करो, जब ढेर सारे पैसे जमा हो जाएं तो किसी एजेंट को दे दो, वो तुम्हें मिडिल ईस्ट भिजवा देगा। कोई राय देता कि रोज अखबार में विज्ञापन देखो, इस तरह ये समझने की कोशिश करो कि किस काम की ज्यादा डिमांड है, फिर वो काम सीखना शुरू करो, फिर काम पर लग जाओ, थोड़ा बहुत तजुर्बा हासिल करो और फिर दुबई निकल जाओ। उन सबके लिए ये मशवरे फिजूल थे, इससे उनको काम तो मिल जाना था, लेकिन कई साल की मेहनत के बाद। मुश्किल ये थी कि इतना सब्र उनके बस की बात नहीं थी। वो तो फौरन अमीर बनना चाहते थे और वो भी बिना किसी मेहनत के। उन पांचों की बातचीत में जोश तब पैदा होता जब वो अपने किसी हीरो का जिक्र कर रहे होते। उनका हीरो फिल्म का कोई एक्टर नहीं होता था, ना ही वो कोई क्रिकेटर ही होता था। उनका हीरो कोई ऐसा शख्स होता था जो बिना किसी मेहनत के अचानक ही बहुत पैसे कमा लेता था। आसिफ के नजर में रॉबिन्सन हीरो था, जिसने अकेले दम पर बैंक मैनेजर को बेवकूफ बनाकर 50 लाख रुपए उड़ा लिए थे। आफाक की नजर में वो गुजराती लड़का हीरो था, जिसने पिछले हफ्ते बिना ज्यादा मेहनत के 5 लाख रुपए कमा लिए थे। बरहान के हिसाब से जर्मनी के वो 3 लड़के कमाल के थे, जिन्होंने लड़की बनकर अखबारों में छपवाया था कि वो अपने 1 लाख मार्क और खुद को लॉटरी में लगा रही है। फिर उन तीनों ने उस लॉटरी के टिकट बेच बेच कर 3 लाख मार्क बना लिए थे। हामिद ने एक क्लर्क का किस्सा सुनाया। उसने AGPR में गबन करके 30 लाख रुपए कमा लिए। इसके बाद उसने VRS ले लिया और सरकार से बहुत सारे भत्ते लेकर स्विट्जरलैंड भाग गया। हामिद के इस किस्से को सुनकर सभी ने उसे अपना गुरु मान लिया। पांचों इस किस्म के लोगों के किस्से एक दूसरे को सुनाकर खुश हुआ करते थे। एक दिन पांचों महफिल सजाए बैठे थे, तभी परवेज ने एक अनोखा आइडिया पेश किया। अलबत्ता बाकी चारों दोस्त परवेज को बेवकूफ समझते थे, वो अक्सर उसे बुद्धू कहकर ही बुलाते थे। परवेज का आइडिया सुनकर सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं। किसी को भी कम से कम परवेज से ऐसे आइडिया की उम्मीद नहीं थी। परवेज को ये आइडिया अखबार पढ़ते हुए आया था। अखबार में उसने एक अपील पढ़ी थी। अपील के मुताबिक एक नौजवान लड़की के दोनों गुर्दों ने काम करना बंद कर दिया था। उसका इलाज सिर्फ अमेरिका में ही हो सकता था। पैसे वाले लोगों से इलाज के लिए मदद की अपील की गई थी। परवेज का मानना था कि जो लोग भी मदद के तौर पर चंदा देते हैं, उन्हें फिर इससे कोई सरोकार नहीं रहता है कि वो इंसान इलाज के लिए अमेरिका गया भी या नहीं। परवेज लोगों की इस कमजोरी का फायदा उठाना चाहता था। इस बारे में पांचों दोस्तों की एक खास मीटिंग हुई। इस मीटिंग में काफी चर्चा के बाद ये फैसला हुआ कि वो लोग भी तकरीबन 1 महीने बाद ऐसा ही एक एडवर्टाइजमेंट अखबारों में देंगे। इस 1 महीने के गैप की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि लोग इस असली विज्ञापन को तब तक भूल भाल जाएंगे। दूसरी बड़ी वजह यह थी कि वो पांचों इस 1 महीने के भीतर इश्तेहार छपवाने के लिए पैसों का बंदोबस्त भी कर लेंगे। फिर कोई एक दोस्त मरीज बन जाएगा और बाकी उसके तीमारदार। लोगों से अपील करेंगे कि इसका इलाज अमेरिका में ही मुमकिन है। जब ढेर सारे पैसे जमा हो जाएंगे तो वो पांचों इन पैसों से दूसरे देश चले जाएंगे और वहां ऐश की जिंदगी गुजारेंगे। महीना बीत चला था। अब मसला ये था कि मरीज कौन बनेगा। मरीज बनना बड़ा ही मुसीबत का काम था और कोई इसके लिए तैयार नहीं था। नाम तय करने के लिए पर्ची डाली गई। इसमें आसिफ का नाम निकला। इस तरह से आसिफ को मरीज बना दिया गया। बरहान ने जिम्मेदारी ली कि वो किसी से कहकर अखबार में छपने वाले विज्ञापन के पैसों का इंतजाम करा देगा। लोग नेक काम के लिए पैसे खर्च करने को तुरंत तैयार हो जाते हैं। आफाक को जिम्मेदारी दी गई कि वो किसी जान पहचान वाले डॉक्टर को तलाशे जो आसिफ को अस्पताल में एडमिट करा दे। आम हालात में पांचों दोस्त काहिल थे। वो हर काम को दूसरे पर टाल दिया करते थे। अब उनकी जिंदगी में एक मकसद पैदा हो गया था। मकसद भी ऐसा जिससे उन्हें अपने रंगीन और हसीन ख्वाब हकीकत बनते नजर आ रहे थे। नतीजतन पांचों दोस्तों ने तन मन और धन की बाजी लगा दी। जुगाड़ तुगाड़ से आसिफ को सरकारी अस्पताल में दाखिला करा दिया गया। बाकी बचे चारों दोस्तों ने मशहूर कर दिया कि आसिफ के दोनों गुर्दे खराब हो गए हैं। उसे इस उम्मीद पर अस्पताल में डाल रखा है कि पैसे जमा हो जाएं तो इलाज के लिए अमेरिका भेज दिया जाए। एक साहब ने नेक काम समझते हुए अपने पैसों से अखबारों में इश्तेहार भी छपवा दिए। चारों दोस्त जुबानी पब्लिसिटी भी करने लगे। नर्स को भी ले देकर इस मंसूबे में शामिल कर लिया गया ताकि इस फरेब पर हकीकत का गहरा रंग चढ़ाया जा सके। फिर आगे क्या होता है इस कहानी में, ये सुनिए अगले भाग में। सुनते रहिए गाथा रूह वही रूप नया। गाथा में आप सुन रहे थे मिर्जा हैदर अब्बास की लिखी कहानी धोखा। आपने सुना इस कहानी का पहला भाग। कहानी का संपादन कुमार रहमान का, गाथा में आपके लिए इस कहानी को प्रस्तुत किया शेफाली कपूर ने।